निचले रहते समय में बाहर तो बिगड़ेगा नहीं, बनेगा जैसा वहाँ पे इतनी अभी पुरुष भी हो सकता है कोई कहते गर्भवती इतनी बाहर निकले गर्भवती भी होगी। हम 400 लोग परिक्रमा के लिए बाहर निकल पड़े। जब हम बाहर निकल पड़े तो महाराज जी ने बोला बताओ तो परिक्रमा कौन कर रहा है। महाराज जी आप और आपके शिष्य कर रहे हैं, 400 लोग क्या कर रहे हैं परिक्रमा कर रहे हैं। महाराज जी ने कहा एक बार मेरे गुरु जी ने यह प्रश्न पूछा था बताओ परिक्रमा कौन कर रहा है, तो फिर उन्होंने उत्तर दिया देखो परिक्रमा तुम्हारे गुरु करते हैं, जिससे तो उस स्थलियों का दर्शन करते हैं जिसकी परिक्रमा गुरु करते हैं। परिक्रमा का मतलब है कि कृष्ण की लीलाओं के दर्शन करना, ये दर्शन आम आदमी नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? जो मुक्त पुरुष है। मुक्त पुरुष उन्होंने स्थलियों पे जहाँ कृष्ण की तमाम लीलाएं हुई उनके वहां दर्शन करते हैं, और जो दूसरे लोग हैं वो क्या करते हैं बड़ी गड़बड़ हो गई। आज आपको टाइम देना पड़ेगा, दोगे ना?
हाँ
हाँ, मैं जल्दी शुरू करता हूँ। बहुत हम निकल पड़े परिक्रमा में, महाराज जी के साथ में निकल पड़े। मैं पूरा आपको भाव में लेते हुए सब चीजें व्याख्यान करते हुए परिक्रमा करा रहा हूँ। परिक्रमा करना बात कर रही है उसी तो गुरु जो है वो लेके जाते हैं, शिष्य उनके पीछे जाते हैं। उन्हें सदियों में गुरु उन्हें लीलाओं के दर्शन करते हैं, फिर वो वर्णन करते हैं। उनके अंतरंग भाव से किया हुआ वर्णन हमारे हृदय में, कानों से हृदय में आता है, उसको हम श्रवण करते हैं। तो गिरिराज गोवर्धन के 7 मील के इस लंबे इलाके में एक गोवर्धन नाम का शहर है जो लगभग बीच में बसा हुआ है, गोवर्धन के बीच में बसा हुआ है। और गोवर्धन के बीच में बसे हुए शहर में एक घाटी है जो पर्वत के दोनों हिस्सों को बीच में से दरार रास्ता देती है। घाटी समझते क्या है? अगर बहुत ऊंचा पर्वत है तो एक पार से दूसरे पार जाने के लिए बीच की जो दरने रास्ते को क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। गोवर्धन की पूरी पहाड़ी है, उसके उस साइड में देखिए ये समझ लीजिए ये गोवर्धन है, इस साइड में नंदगांव बरसाना है, एक लग राधा जी रहती है और एक लग कौन रहता है? कृष्ण रहते हैं। और यहाँ पे गोवर्धन पर्वत है और गोवर्धन के इस तरफ एक गोविंद कुंड है। गोविंद कुंड में एक ऋषि जी यज्ञ कर रहे हैं, हल्ला मच गया, ऋषि लोग यज्ञ कर रहे हैं। जितने भी ग्वाल में है, जितने भी क्या कहते हैं ब्रज के लोग हैं, वो अपनी अपनी लड़कियों को भेजे दूध घी दही लेके ताकि यज्ञ में दिया जा सके, तो उनके क्या होगा? उनके सारे परिवार को आगे लगेगा। क्योंकि खाली लड़कियां जाए लड़के नहीं जाए, ना खाली लड़कियां जाए, क्यों? योग माया बड़ी चतुर है, उसको कृष्ण से गोपियों को मिलाना होता है। वो ऐसे ऐसे अनाउंसमेंट करा लेती है सारी लीलाओं का, ऊपर से बंदोबस्त कृष्ण की एक शक्ति है योग माया, वहाँ पूर्णमासी के रूप में बुढ़िया के रूप में रहती है और बड़ी तेज तरार और मान्यता है, सब लोग उसकी बहुत कदर करते हैं। भविष्यवाणी करने वाली है और जो मुझे बोले पूरा हो जाता है, पर वो कृष्ण की असल में क्या है? अंतरंगा शक्ति योग माया, उसको पूर्णमासी कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जितनी भी गोपियां हैं वो अपने घर से दूध घी मक्खन लेके जाए, कहाँ जाए? गोविंद कुंड में जाए, और जो ऋषि यज्ञ करें उसमें दे तो सारे घर के परिवार का फायदा होगा। अब जाएंगे कहाँ से? 9 मील पर्वत को पार कैसे करेंगे? तो एक छोटी सी क्या है? घाटी। उसे घाटी से वो निकल रही है और निकलने से पहले ही सोचते हैं कि यहाँ पे वो होगा, तो वो घर से निकली है घी दूध लेके। उनको कोई मतलब नहीं है कि ऋषि को दूध देना है, वो भी इसी इलाके से निकली है कि ये भी निकला होगा कहीं ना कहीं। अब मिले तो कहाँ मिले? तो ये बीच वाली जगह पे मिले। मिलने की उत्कंठा इधर कृष्ण के लिए है और कृष्ण अपने सखाओं के साथ है, और मिलने की उत्कंठा इधर दादाजी को भी और उनकी सखियों की भी है। दोनों उत्कंठा से मिल रहे हैं और जैसे ही दान घाटी से आए और वहां पे मिल गए। कैसे मिल गए? उन्होंने अपना एक लंबा सा डंडा ले रखा है, दान घाटी का छोटा सा टकला सा रास्ता है डंडा लोग, और यहाँ पे रुक जा। क्यों?
टॉयलेट से लेके जाओ, टॉयलेट से लेके जाओ, क्या होता है, दान लेके जाओ, दान क्या लेके जाओ, ये टैक्स लगता है, टैक्स किसका लगता है। ये जो घाटी है देखो, इतना बड़ा पर्वत है, बीच में से निकल रहे हो, राजा का टैक्स है। अब ये कौन से राजा का टैक्स है, कर्ज नहीं तो भेजा नहीं है, तू कौन सा राजा आ गया, मैं राजा हूँ, यहाँ पर टैक्स देके जा। अब मिलने की उत्कंठा दोनों की है, लेकिन अब वहाँ पे झगड़ा शुरू हो गया। ये क्या है, मुंह अटैच हो गई मुझे। अच्छा भाई ये तो बता, तू किस हैसियत से लेना है, तेरा औकात क्या है, तू है कौन यहाँ का जो ले रहा है। बोलते मैं यहाँ का राजा हूँ, तू किस बात से राजा हुआ, और तुमने वृंदावन का नाम सुना है, वृंदावन की देखभाल करने और उसकी रानी कौन है, वृंदा देवी, वृंदा देवी राजा जी की पत्नी है। तो वृंदा देवी यहाँ की रानी है और मेरी शादी वृंदा से हो रही है, मेरी शादी वृंदा से हो गई है। अरे चलो वृंदा को बताओ, वो हमारे साथ आएगी, देखा तो वृंदा नहीं थी, अब वृंदा आगे, वृंदा को अब वृंदा वृंदा इतना भागी भागी, हाँ क्या जी राधे, ठीक है जी, तू ये कृष्ण जो है कह रहा है कि इसकी तेरे से शादी हो गई है, ये कौन है, शादी हो गई की बात सुन रही हो गई, ये कौन है, और तुम नहीं जानती इसको, तुमने कभी देखा नहीं है, नहीं मुझे कह रहे तेरे से शादी हो गई, इसी से ये है कौन, कृष्ण है। अरे ये वो तो नहीं, मैंने सुना है कि एक नंद बाबा का छोटा है और बड़ा ही लंपट है, दुष्ट है, कोई भी लड़की मिलती है तो कहता है मेरी बीवी, हाँ ये वही है, वही कह रहे हैं, अरे इसकी कहने की बात सुन। और जब कृष्ण ने देखा कि दाल नहीं गल रही है, तो उन्होंने उसी समय अपनी छड़ी से मटकियां तोड़नी शुरू की, और उन मटकियों में जो जो भी भरा पड़ा था वो सारा का सारा उनके ऊपर गिर पड़ा, और बस वो भीग गई और दही मक्खन उनसे गिर रहा है, वो उसे हाथ रख के खा रहे हैं और मजाक कर रहे हैं। और महाराज जी कहते हैं कि ये दान घाटी की लीला, क्योंकि इस घाटी में कृष्ण ने दान लिया, इसलिए इस घाटी का नाम पड़ गया दान घाटी, दान घाटी की जय, दान घाटी की लीला में हम दंडवत प्रणाम करके इस लीला का स्मरण करके इसको प्रणाम करते हुए ऐसा हम भावना करें कि भगवान कृपा करके ये लीलाएं हमारे हृदय में स्फुरित कराए। दीज पार्ट एंड मेनी पार्ट इन आवर हार्ड, if our heart would get cleansed enough. अभी गोपियों ने देखा कि अरे भैया इस बार से ये बाजी मार गया है, हम रह गए ये बाजी मार गए, फिर नहीं वो वापस, फिर वो मलिकिया लेके आई। अब भी जान घाटी में किसी तरह से चुपके चोरी से ऊपर नीचे होते होते बच के निकल गई और थोड़ी दूर आगे चली, अब हमने परिक्रमा शुरू कर दी है जी, ठीक है, दान घाटी में प्रणाम करके हमने परिक्रमा शुरू कर दी है, दाएं हाथ पे गिरिराज जी को रखा है, चल पड़े हैं, बड़े ऊंचे गिरिराज जी हैं, उस समय की लीलाओं के हिसाब से तो मीनू ऊंचे हैं, लेकिन अभी भी हम देखते हैं तो काफी ऊंचे हैं, थोड़े ही कुछ किलोमीटर आगे चलते हैं तो दान निवर्तन कुंड है, वहाँ पे आज गोपियों ने कृष्ण को घेर दिया, बोलते हैं आ जा भैया तू भी अपना दाव दे, क्या दाव दे जाए, उन्होंने कृष्ण को पकड़ लिया सारी गोपियों ने, आज वो घर से घाघरा लेके आई है, उनकी धोती उतार के घाघरा पहन ली और ऊपर से पीतांबर उतार के उनको बिल्कुल लड़कियों जैसा सुंदर सजा सजोगे, और अपने जितनी मटकियां हैं उस पे एक मटकी रखी, मटकी के ऊपर दूसरी मटकी रखी, तीसरी मटकी रखी, और रख के चल रही अब जरा मटकी लेके गोविंद कुंड को वहां पे सुनाए, यज्ञ हो रहा है वहां पे, यज्ञ में चल रहा है। अब कृष्ण इस समय बंधे हुए बेचारे, क्यों बेचारे, कृष्ण एक है गोपियां अनेक, और उनको भी मजा आ रहा है, बोलते हैं ये तो बढ़िया अच्छी बात है। अब वो जैसे ही मछलियों के मटकियां लेके चल रही है और गोविंद कुंड में चल पड़ी है, उसी तरह पीछे से एक गोपी ने चंडी से फिर से मटकिया में चंडी मारी और मटकिया था गोभी को सारे का सारा फिर से गोभी माखन था घी था वो उनके ऊपर गिरा। अब ये गोपियां उनके ऊपर से खिल्ली हो रही है, और इस तरह से दान जो वहां लिया था यहाँ पे इन्होंने वापस करके वो क्या किया, निवर्तन किया, दान निवर्तन कुंड है वहां से। और महाराज जी कहते अच्छे माखन क्या है, ये जो छाछ है ये क्या है, ये जो रस निकल रहा है ये क्या है, ये प्रेम है। दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए जो प्रेम है वही माखन के रूप में ऊपर चिपका रहा है, वही उस मटकियों में भरा पड़ा है। हम जब थोड़ा सा आगे चलते हैं कृष्ण की अन्य लीलाओं को देखते हुए, इस समय जो हमारे लोगों की लीला है, हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं तो लेफ्ट साइड में एक मोदी भवन है, वहाँ पे हमारी परिक्रमा हमेशा रहती है। महाराज जी के साथ काफी के महीने में हम परिक्रमा करते हैं। मैंने महाराज जी के साथ चार या पांच परिक्रमाएं की हैं, आज तक हर साल एक बार। तो पिछले दो साल से हम लोग मोदी भवन नाम की एक जगह पर रुके, बहुत बड़ा भवन है और वहाँ पे दिवाली के दिन हम दिवाली मनाते हैं पे मोदी भवन में। और कैसे दिवाली मनाते हैं आपको सुनाए, जिससे अब हम गुजर के जा रहे हैं। समय जो रात अंधेरी की है इस समय, किसी कारण ऐसी घटा आ गई है, सूरज ने एक नंबर ढक दिया है, रात अंधेरी हो गई। पर हम वहाँ पे क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े थाल, इतने बड़े बड़े थाल, उसमें सैकड़ों दिए लगा के और दिए जला के और उन थालों को एक साथ अपने सिर पे लगा के चारों भक्त चल पड़े हैं लाइन में गोवर्धन के पास। और वहाँ जाके लाइन में कतारों में दिए जला के दीपावली रख के, दीपावली का मतलब दीयों की आवली रख के गिरिराज गोवर्धन को दिखा दे, उनके ऊपर उनकी गिरती हुई लौ से जो जो गिरिराज गोवर्धन अपनी छटा दिखाते हैं, बड़ी सुंदर छटा लगती है। और फिर उनकी उन दीयों से आरती की जाती है, सैकड़ों जगह से आरती करते हैं, सारे भक्त और महाराज जी ने आरती की। और दूसरे दिन अन्नकूट का प्रोग्राम होता है, हर भक्त चार चार पांच पांच चीजें बनाते हैं, तीन तीन सौ भक्त होंगे, 700, 800, 900 पकवान बन के और सब उसको अपनी टोकरी में रख के और चलते हैं अन्नकूट के लिए। ये वो स्थान है, उस स्थान को प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो महाराज जी हमें एक जगह स्नान करने के लिए बता देते हैं, फिर वर्णन करते हैं। उस समय गोवर्धन पर्वत की जो ऊंचाई है सबसे बहुत ऊंची है और उसकी चोटियों के शिखर है, छोटे छोटे शिखर है, शिखर पे बड़ी पतली पतली नोके हैं। महाराज जी कहते हैं प्रेम वो होता है जिसमें अपने प्रेमी को मिलने की छटपटाहट होती है, उसे आनंद देने के लिए छटपटाहट होती है। प्रेम की कई स्टेजेस होती है, कई लेवल होते हैं। इतने मान अनुराग करके कई प्रेम के क्या है लेवल है। शुरू में मैं उनके प्रिया हूँ, वो मेरे प्रीतम है, यहाँ से संबंध ज्ञान से प्रेम शुरू होता है। और शुरू और उसके बाद मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ, उनके विचारों में डूब के, उनके मिलन में, उनके विजय में, जो गोपियों का कृष्ण के प्रति भावमय अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं की अलग अलग डिग्रियां हैं, उस डिग्री से उस प्रेम के अलग अलग नाम दिए गए हैं। प्रेम कहीं उनको स्नेह कहा गया है, कहीं मान कहा गया है, कहीं राग कहा गया है, कहीं अनुराग कहा गया है, और कहीं और ऊपर जो सबसे ऊपर पहुंच जाता है उसे रूढ़ कहा गया है, उससे भी ऊपर जो पहुंच जाए जहाँ राधा जी तक का भाव जाता है उसे अधिरूढ़ कहा गया है। इन सबको महाभाव कहा गया है। जी जाता है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लव व्हेन इट गेट्स इंटेंसिफाइड। तो यूँ समझते हमने गले को पीला तो उसमें रस निकला, रस को और गर्म किया तो वो क्या बन गया, गुड़ बन गया, गुड़ को और गर्म किया और जब उसमें मिठास आई तो वो चीनी बन गई, चीनी को भी और जब हम और ज्यादा उसको रिफाइन करते हैं तो शकरा बन जाती है, तो उसको ये वो भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मिश्री, मिश्री बन जाती है। और उसके ऊपर एक चीज है सीतोफली, उसको उन्होंने नाम दिया हुआ है, हम लोग तो आजकल देख ही नहीं पाते, जो मिश्री से भी ज्यादा सुध है। इसमें से प्रेम अपनी चरम सीमा के बावजूद भी बढ़ता चला जाता है। ये एक ऐसी अद्भुत चीज है कि इसका वर्णन करना मुश्किल है। तो प्रेम अनुराग की अवस्था में राधा जी घर से निकली है जून के महीने की तड़पती हुई गर्मी में, 46 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ के फारेनहाइट में पता नहीं कितने पहुंचे, 100। अगर देखो सम समतल स्थान है ना, उसपे धूप पड़ रही है तो उसके ऊपर गर्मी इतनी अधिक नहीं होती जितनी अगर क्या हो नौकीली की। जो नौकीली से हीट क्या होती है ज्यादा हो जाती है, उसमें अगर रोई लगता तो बहुत करके चल जाए, इतनी तेज गर्मी। लेकिन राजा जी अपनी सास को ये बहाना लगा के मैं सूर्य देव की पूजा करने जा रही हूँ, भागी है खाली थोड़ी तो लगती कहीं इधर उधर, और अपना लहंगा संभाल के इधर उधर कुछ कुछ के देखनी है कहाँ, कहीं निकल के तो आया होगा आज को चार में किधर हो रहा है। और उस पर्वत की चोटी के ऊपर अपने पंजे को रख के और पुचक देंगे, चोटी वैसे ही गर्म और नुकीली और उसके ऊपर पंजा रख के और उससे पुचक के झांक के देख लेंगे गोवर्धन के नीचे कहीं है कि नहीं। आज रूही को जलाने वाले पर्वत की वो चोटी भी उनको ठंडी महसूस हो रही है, ये अनुराग। अपने प्रिय की सेवा के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनसे मिलन करने के लिए जितने भी कष्ट है, कष्ट ना लग के सुख दिखाई दे उसे उस प्रेम की उस अवस्था को क्या कहते हैं, अनुराग। ये अनुराग किसमें है, ये राजा जी में। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद एक संकर्षण कुंड आता है। संकर्षण बलराम जी के नाम से है, बलराम जी हमारे गुरु के मूल हैं, गुरु के मूल इन्हें आदि गुरु क्या। हम अपने गुरु जी की जो पूजा करते हैं, हम अपने गुरु जी से जो संबंध स्थापित करते हैं, गुरु जी से जो ज्ञान लेते हैं, वो गुरु जी पीछे से जहाँ से आ रहे हैं वो मूल क्या है, मूल है क्या कहते हैं बलराम जी। संकर्षण उनको कहा गया, इसको यूँ समझेंगे कि 100% उदाहरण नहीं है, लेकिन अभी मैं जब हवाई जहाज से नीचे आ रहा था तो सामान लेने के लिए बेल्ट पे गया, जो कन्वेयर बेल्ट होती है ना, तो सारा सामान उन्होंने उतार के कन्वेयर बेल्ट पीछे बाहर हवाई अड्डे तक जाती है, तो सामान पीछे जो क्या डाल देते हैं उसमें से ट्रॉली में आता है और कन्वेयर बेल्ट में डाल देते हैं। अब अंदर आप कन्वेयर बेल्ट के किसी भी जगह खड़े हुए हो आपका सामान वहां से होकर के आपके पास आ जाता है। तो इसी तरह से जो जितने भी गुरु तत्व है उन सब गुरु तत्व से होते हुए कन्वेयर बेल्ट आज आपके सामने भक्ति का सामान ला के प्रस्तुत करती है। जो बेल्ट का हिस्सा अभी आपको सामान दे रहा है वही आपके लिए अभी होता है। इसी तरह से जितनी भी हमारी गुरु परंपरा है, हमारे गुरु, गुरु के गुरु, गुरु के गुरु, गुरु के गुरु और कहां तक बलराम जी तक, वो सारी की सारी कन्वेयर बेल्ट है और सारी की सारी कन्वेयर बेल्ट से वहां से भक्ति चली आ रही है। लेकिन आज हमें जय बोल रहे हैं इस समय हमारे मौजूदा गुरु, वो हमें भक्ति प्रदान करें। संकर्षण कुंड में हमने प्रणाम किया, गुरु को ध्यान दिया और आगे चल पड़े। जब हम आगे चलते हैं तो गोविंद कुंड करके आता है, बड़ा मनोरम है। जब इंद्र ने मूंग खाई गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली में उठाकर, और कृष्ण ने दिखा दिया कि सारे ब्रज का बाल बांधा भी नहीं हुआ, थोड़ा सा भी नुकसान नहीं हुआ, तब इंद्र को होश आया, भैया जिससे मैं टक्कर ले बैठा हूँ वो तो स्वयं कृष्ण है। अब वो छटपटाए और कृष्ण के पास आए, पर आए कैसे कृष्ण के पास, कृष्ण के पास आने के लिए उन्होंने इस ब्रह्मांड से बाहर तो जा नहीं सकते थे, इस ब्रह्मांड के अंदर एक जगह है उसे गौलोक कहते हैं, गोलोक नहीं क्या कहते हैं गौलोक, वहां से गाय रहती है। उस गौलोक में उन गायों की जो रानी है उसका नाम भी एक सुरभि गाय, एक भगवान के अपने गोलोक वृंदावन में गाय है, वो तो दिव्य गाय है, वो तो कृष्ण की प्रिय गाय है। लेकिन इस ब्रह्मांड में भी एक लोक है जो गौ लोक कहलाता है, उसमें सिर्फ गाय बड़ी सुंदर गाय रहती है, उनमें भी उस गाय की रानी का क्या नाम है सुरभि। तो इंद्र ने सुरभि को ले लिया कि भाई सुना है गाय कृष्ण को पसंद है, अगर मैं गाय को आगे ले जाता हूँ तो इंद्र कृष्ण मुझको देखते तो कुपित होंगे, लेकिन गाय को देखते उनका क्रोध गाय को आगे रख के वो लेके गए और सुरभि कुंड करके एक जगह जो आगे आएगी वहाँ पे उन्होंने जाके कृष्ण की स्तुति की है और कृष्ण को मनाया है और कृष्ण से कहा है मेरा अपराध क्या करे क्षमा करे। और गोविंद कुंड में उन्होंने अपने ऐरावत हाथी से बड़े सुंदर जल से कृष्ण का अभिषेक किया है। कृष्ण का अभिषेक किया है, वो कुंड है कृष्ण के अभिषेक से अभिषेक उस जल को हम पान करेंगे, उसका आचमन करेंगे, उसको अपने सिर पे डालेंगे और कहेंगे कि हे प्रभु आपके इस अभिषेक के जल से आप हमारे को शुद्ध कर दो, हमारे अंदर जो भी कुछ सुविधाएं हैं, कुछ हमारे अंदर शंकाएं हैं, जो हमारे अंदर थोड़ी बहुत डाउट है वो दूर हो जाए। क्योंकि इंद्र को डाउट था कि कृष्ण कौन है, भगवान है। इसी तरह से हम सबको ये डाउट रहता है, हर चीज को मान लेंगे टेलीविजन में जो दिखाई देगा, लेकिन संत महात्मा जो कहते हैं कृष्ण भगवान है ये मानने में हमेशा डाउट बना रहे। तो हम आज गोविंद कुंड से ये प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे इन डाउट को जल से उखाड़ फेंके। और वहां पे कृष्ण का नाम गोविंद रखा उन्होंने, किसने, इंद्र ने। गो मैंने गाय, गो मैंने इंद्रिया, गो मैंने गोपियां, गो मैंने ग्वाले, गो मैंने गो और गो मैंने गोवर्धन और गो से जितने भी बड़े बड़े गोप लोग हैं वो सारे के सारे। इसके साथ गो का मतलब है गो बिंद, बिंद का मतलब है इनको प्रसन्न करने वाले, जो हमारी इंद्रियों को प्रसन्न करते हैं, जो गायों को प्रसन्न करते हैं, जो गोपियों को प्रसन्न करते हैं, जो गोपों को प्रसन्न करते हैं, जो गोवर्धन को प्रसन्न करते हैं, जो गोपों को प्रसन्न करते हैं, गायों को प्रसन्न करते हैं, गो वत्स को यानी बच्चनों को प्रसन्न करते हैं, वो गोविंद। आज उन गोविंद की हम शरण में लेते हैं, गोविंद हरि गोपाल हरि चित्तौर यशोदा लाल हरि। आगे चलते हैं गोविंद कुंड से, बड़ा रमणीय स्थान आता है चारों ओर। आज की तारीख में ही गोवर्धन में ऐसे सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं और घिरा हुआ है कि वहाँ पे बैठ के दिल करता है शांति से कृष्ण की स्मरण करके उनको याद करें कि प्रभु आज तो आ जाओ। उसको पार करते करते एक स्थान पे आते हैं, यहाँ दो कुंड एक साथ दिखाई देते हैं और उसी के पीछे एक स्थली है, उसे कदम्ब खंडी कहते हैं। ढेर सारे कदम के वृक्ष हैं। कदम के वृक्ष की खूबी है कि वो गोरे रंग का होता है, इसलिए ब्रज में कदम के वृक्षों को राधा जी के का स्वरूप माना जाता है। और एक वृक्ष है वहाँ पे तमाल का वृक्ष, वो काला होता है, पता है किसका माना जाता है, कृष्ण का माना जाता है। और तमाल का वृक्ष वाला टेढ़ा मेढ़ा होता है और कदम का वृक्ष सीधा होता है। तो कृष्ण जैसे टेढ़े मेढ़े हैं वैसे तमाल का वृक्ष है। और कदम के वृक्ष में बड़े सुंदर सुंदर कदम के फूल लगते हैं, उससे बहुत सुगंध होती है। आज अगर हम ब्रज देखें तो कदम के वृक्ष सारे के सारे गायब होते चले जाए। महाराज जी कहते हैं जैसे जैसे आसुरी प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे कदम जो है वो गायब होते जा रहे हैं। कदम के वृक्ष में यहाँ पे भगवान ने लाच रचाया है, बासंती राज कहते हैं। जयदेव गोस्वामी जी ने अपने गीत गोविंद में इसका वर्णन किया, जो वृंदावन में भगवान ने राज रचाया था उसमें सारी की सारी गोपियां आई थी। सारी की सारी गोपियों में कुछ गोपियां आई जो राधा जी, एक है कृष्ण की सबसे प्रिय गोपी राधा जी और एक राधा जी की कॉपी टीचर है, उनका नाम है चंद्रावली। वो क्या है, राधा जी की कॉम्पिटिशन है, वो भी कृष्ण को प्रेम करते हैं, राधा जी भी कृष्ण को प्रेम करते हैं, कृष्ण अंदर से राधा जी को अधिक प्रेम करते हैं। और चंद्रावली अपने प्रेम भाव से उनको वश में करना चाहती हैं और राधा जी भी अपने प्रेम भाव से वश में करना चाहती हैं। चंद्रावली समर्पित हो जाती है और राधा जी सुलट जाती है अंतर में। चंद्रावली समर्पित हो जाती है और राधा जी ऐंठ जाती है। राधा जी की ऐंठ के आगे इनकी ऐंठ तय कर जाती है कृष्ण जी और चंद्रावली के आगे। और चंद्रावली के समर्पित हो जाने पे कृष्ण जो है वो थोड़े से मुरझाए, तो जल्दी समर्पित होने के कारण कृष्ण को अगर मजबूर करके रखती है। इसलिए जब हम राधा कृपा कटाक्ष पढ़ते हैं तो उसमें एक जगह आता है, निरंतरम वशी कृते प्रतीत नंद नंदने, नंद नंदन को ये प्रतीत होता है कि निरंतरम मेरे को वश में कर रखते हैं इन्होंने। ये राधा जी की क्या है, निरंतरम प्रतीत नंद नंदन, नंद नंदन को ये आभास बना के रखती है कि तुम मेरे अंदर में रहते हो, तुम जरा सा भी इधर नहीं करो। राजा जी के ऐन जाने को, रूट जाने को मानवती हो जाने कहते हैं। क्या कहते हैं? मान में आने। राजा जी जब मान में आ जाती है, कृष्ण की सारी हालत खराब हो जाती है, उनकी हालत खस्ता हो जाती है। राजमंडल में जब गोपियों के संग वृंदावन में रास हो रहा था, तो सारी की सारी गोपियों के संग कृष्ण एक बन गए थे, एक गोपी और एक कृष्ण। दादा जी देख रहे हैं आज चंद्रावली के साथ ही नाच रहे हैं, उनके साथ ही नाच रहे हैं। फिर जब उन्होंने ये देखा तो दादा जी के चेहरे पे, आंखों पे क्या हो गई? क्रोध आना शुरू हो गया। तो उनके आंखों पे क्रोध आना शुरू हो गया, उसने कहा कि अब बात नहीं बनेगी। वो गए और उन्होंने अचक के चुपचाप सब लोगों को छल करके राजा जी को पकड़ा और ले चले अलग से, क्योंकि अब राजा जी क्या हो चुकी है? मानवती हो गई। किसी ने पूछ डाला, भागवत में ये लिख रहा है, भागवत में आया है कि राजा जी को लेके कृष्ण सारे राज सभी से क्या हुए? गायब हो गए। किसी ने पूछा, मैंने तो सुना है कि राजा जी को कृष्ण सबसे अधिक प्यार करते हैं, ये तो कोई बात नहीं बनी। अरे सबके बीच में राजा जी को लेके अलग निकल गए हैं, तुम्हें लगता है बात नहीं बनी? किसी को मालूम है राजा जी को लेके गए हैं, चोरी चोरी लेके गए हैं। अगर प्यार करे तो जिम्मेदारी से लेके जाए, चोरी चोरी की बात की। तो वहां उन्होंने कहा कि नहीं, जब रात हुआ, क्या कहते हैं, गोवर्धन की तलाटी है, उस समय की रात की बात है। राज रात में बस अपने आप ही सुलग लेंगे, रात में कारण कुछ नहीं, अपनी ही उनकी सखियां थी जिनके साथ राज कर रहा था। तो वहां से उठ के चली गई, कृष्णा भी राज में है, वहां से उठ के चली। कृष्ण का नथिंग ड्रिंग, राज को रुकवाया कुछ और उनको ढूंढ रहे हैं। ये वो स्थान है जिसे कदम खंडी है। यहाँ पे ये बताया जयदेव गोस्वामी जी ने, क्योंकि कृष्ण राजा जी को सबसे अधिक प्यार करते हैं, यहाँ उन्होंने दिखाया कि अगर राज है तो किसके खाते है? राजा जी के खाते। अगर राजा जी राज में नहीं है तो राज नहीं छोड़े, राज रोक दिया उन्होंने। वहाँ चोरी छुपके ले गए थे, यहाँ सामने उनके विजय में छट पटा रहे हैं, रो रहे हैं, कहाँ है राजे, राजे जी आए। उसी विरह में वहाँ पे वो जब मिलते हैं आतुर होके एक दूसरे से, तो प्रेम मिट्टी आग में दोनों के प्रेम खेते पिघल जाते हैं, और पिघल के एक नवल कुंड बन जाता है और एक अप्सरा कुंड बन जाता है। अप्सरा मैंने परी, अप्सराओं में जो सर्वोत्तम है वो राधा जी अप्सरा कुंड, और नवल मैंने नित्य नूतन वो कृष्ण नवल कुंड बन जाता है। वहां से हम चलते हैं थोड़ा आगे नवल कुंड से, इसी बीच में एक जगह आती है, अब मैं थोड़ा सा स्पीड में देरी करती हूँ, उसे कहते हैं मुखारविंद। यहाँ माधवेंद्रपुरी में अपने को भगवान ने दर्शन दिए थे, और वहां पे उन्होंने अपने गोपाल जी को प्रकट कराया था। गोपाल जी दबे हुए थे किसी गोवर्धन पर्वत के एक हिस्से में, और सारे वहां पे माधवेंद्रपुरी आए, माधवेंद्रपुरी जी को दर्शन कराए। बहुत लंबी कथा है, बहुत तेजी से काट के मैं छोटी करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और वहां पे उनका अभिषेक हुआ, उस जगह का नाम जो है मुखारविंद कहलाता है। लेकिन वहीं पे उन्होंने घूम के दूसरी जगह पे उनका मंदिर बनाया था, और उस मंदिर में वो उनकी सेवा करते थे और वो खुद भी रहते हैं। और क्योंकि ये जति थे यानी सन्यासी थे, इसलिए उस जगह का नाम पड़ा जतिपुरा। पर इससे पहले परिक्रमा घूम जाती है, जो सात कोस की परिक्रमा हमने बीच से शुरू की है, साढ़े तीन कोस में परिक्रमा क्या करती है? घूम जाती है। जहाँ ये परिक्रमा घूम जाती है उस जगह का नाम है पूछड़ी का लोला। पूछड़ी करके एक भगवान के मित्र थे, जब कृष्ण चले गए थे ना, तो वो कृष्ण की खोज करते 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 गोवर्धन के इस हिस्से तक आ गए थे। पूछड़ करके उनका नाम है। और वो गोवर्धन के उस जगह आगे बैठ गए, बोलते अब मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, कृष्ण को होना होगा तो वापस नहीं आएगा। वहीं से परिक्रमा क्या करती है, बैग मारती है, इसलिए उसका नाम रख दिया लोटा। उस तरीके लोटा, तो उस तरीके लोटा से हम बैग मार चुके हैं, परिक्रमा में वापस चल पड़े हैं। और फिर आया हमारा नवल कुंड और अक्षरा कुंड, और उसको पार करके हम थोड़ा आगे जाते हैं। तो ये कदम खंडी यानी राज स्थली को पार करते हुए तो लेफ्ट हैंड में सुरभि कुंड आता है और राइट हैंड में हमारी गिरिराजी कर देंगे। वो सुरभि कुंड जहाँ पे इंद्र जो है सुरभि को लेके आया था और वहाँ पे उन्होंने प्रार्थना की थी विष्णु। इस स्थान पे इसको अपराध भंजन स्थल भी कहा है। अगर हमसे भी कोई अपराध हो गया तो यहाँ जाके हम क्या करें, अपराध भंग करने की प्रार्थना करते हैं। यहाँ पे हमारी परिक्रमा हमेशा रुकती है और समय हम लोग नाश्ता करते हैं, महारानी में नाश्ता कराते हैं, हम सुरभि कुंड में अभी वो करते हैं क्या कहते हैं आचमन करते हैं, अपने को डालते हैं, अपराध मांगने की प्रार्थना करते हैं, महाराज जी यहाँ पे लीला स्थली का वर्णन करते हैं और फिर सब लोगों को प्रसाद बढ़ता है, ब्रेकफास्ट जिसे कहते हैं, और उसको करके फिर हम यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं। आगे पहुँचते हैं तो वो स्थान आता है जिसे मुखारविंद कहते हैं, जतिपुरा भी कहते हैं। उस स्थान पे बहुत गहमा गहमी है, खूब दूध की दुकानें हैं, सब लोग कहते हैं दूध लो और अभिषेक कराओ गिरिराज जी को। अधिकतर लोग महाराज जी भी दूध लेते हैं, गिरिराज जी के वहाँ पे किलाए हैं, उनका अभिषेक किया जाता है, दूध हर घर करके गिरता है, उसको लोग चरण के रूप में लेते हैं। मिठाइयों की दुकानें, खाने पीने की दुकानें, जो खाने पीने के मूड में वो खाते पीते हैं, जो खाली पेट परिक्रमा करते हैं वो खाली पेट आगे निकल जाते हैं। आगे चलते चलते ये परिक्रमा, दाएं हाथ पे खाली पर्वत है, विशेष कुछ स्थान नहीं है। जब हम आधा क्रॉस कर लेते हैं तो गोवर्धन शहर आ जाता है और वही दान घाटी के पे हम पहुंच जाते हैं, जो कि जिसमें गोवर्धन पर्वत एक हिस्सा उस साइड में और एक हिस्सा इस साइड में। हमने जो गोवर्धन की ये पूरी परिक्रमा की है एक हिस्से की, इसे बड़ी परिक्रमा कहते हैं। क्या कहते हैं, बड़ी परिक्रमा। किलोमीटर के हिसाब से करीब 12 किलोमीटर की परिक्रमा हो गई और अब 11 किलोमीटर की करीब परिक्रमा रह जाती है। वो दूसरी परिक्रमा है, उसे छोटी परिक्रमा करते हैं। उस परिक्रमा के लिए आइए हम अब चल पड़ते हैं। उस परिक्रमा में अब हम चल रहे हैं, चलते 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 2-3-4-5 किलोमीटर के करीब पहुंच गए हैं। 4 किलोमीटर पहुंचने पे एक स्थान आता है, 4 किलोमीटर या 11 किलोमीटर में गड़बड़ी ना हो सकता हूँ। उस जगह का नाम है उद्धव कुंड। उद्धव कुंड में हम जाते हैं, महाराज जी वहाँ कथा सुनाते हैं, बड़ी लंबी चौड़ी, उसे मैं शॉर्ट में सुनाऊंगा। मैं चौबीस हो गए, कल शुक्रवार है और कल हम लोग वहाँ जाएंगे। क्या कहते हैं, कल ही है ना शुक्रवार, कल माधव ना प्रभु आज आए नहीं क्या? अगर वो तो उनके पूरे करने में तो थोड़ा टाइम लग जाए, और कथाएं को सुनते सुनते करनी है तो उनके यहाँ भी सुनाई, पर कल तो मैं 9 अध्याय का कथन करें, किसी तरह से टाइम को खींचा जाए तो मजा आ
जाए।
तो परिक्रमा आधी करा रही है, आज पूरी कराते हैं परिक्रमा। आप लोग मुझको 10-15 मिनट और दे दो, ठीक है? तो अब हम लोग पहुंच गए हैं उद्धव कुंड में। उद्धव जी को कृष्ण ने भेजा था गोपियों को सांत्वना देने के लिए। हमारे एक कहावत है, अगर मैं गलती ना करूं, बचपन में स्मृति में कई बार उसको बोलने में उल्टा चीजें कर देता हूं। मुसलमानों में दूबे चौबे की दूबे की बनने गए थे, छब्बे जी बन के आगे कुछ ऐसी भी काम
चौबे
बन के आगे उधर भी गए थे अपने ज्ञान की बड़ी गुदड़ी बेखान करने के लिए गोपियों को, लेकिन गोपियों के प्रेम के आगे उनकी कुछ नहीं करी और गोपियों ने उनकी ज्ञान की गुदड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसको यमुना जी में बहा के खारे समुद्र में जाके मिला। ज्ञान की क्या गुदड़ी थी, गोपियां कहती हैं, अरे तो कृष्ण उधर कहते हैं, तुम कृष्ण के लिए क्यों रोती हो, कृष्ण तो सर्वव्यापी है, वो तो कहाँ नहीं है, तुम उनको अपने हृदय में देखो। तो उसने उधर एक बात तो बता, जो सर्वव्यापी है तो वो वहां बैठा क्या कर रहा है, मैं क्यों नहीं आ जाता? तू वहां पे है सर्वव्यापी है और हमारे साथ वही आ जाएगा। वो बोलते हैं अरे वो भ्रम है, बोलते भ्रम तुझे मुबारक, हमें तो कृष्ण चाहिए। वो जो मनु आई थे तभी एक हमन था, वो किसके साथ चला गया? केवल श्याम संग, श्याम के साथ चला गया। उधर तस्वीर मन नहीं है। उधर भी जब वहां पहुंचे तो गोपियों ने कहा देखो ही देखो, कृष्ण ने अपने रिश्तेदारों को मारा है, वहां पे तंत्र को मारा है, अब लगता है उसका श्राद्ध करना है, श्राद्ध के लिए पिंड चाहिए, तो उनको मथुरा में कोई पिंड नहीं मिले। पिंड जानते ना, गोल गोल थोड़े से आटा जी को मिला के पिंड दान करते हैं हमारे उसमें, इनको पिंड नहीं मिले तो इन्होंने सोचा कि अब तो सारी गोपियों ने प्राण त्याग दिए होंगे तो उन्हें ऐसे पिंड ले आए, वहां जाके ऐसे पिंड ले आए, इसलिए यहाँ भेज दिया। कहती है देखो तो देखो, उनको मालूम है अभी ये जिंदा है, क्यों? तभी सोने के रथ में भेजा है कि देखो वहां पे तुम, वहां तुम्हें नंगे पांव घूमा करता था, अब तो मेरे नौकर चाकरों के पास भी क्या है, सोने का रथ है। जब ये बातें कर रही है तो वो तो कहते हैं तेरा बिरा कर, तुम रोज सोने के रथ में क्यों आया, वो तो ब्रज में आया और सोने का रथ उठा लाया। गोपियों की बातें सुन सुन के बार बार वो माथे पे हाथ बच, तूने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा क्यों किया। जब वो यशोदा जी नंद बाबा के पास गए तो नंद बाबा को कहते हैं बोलो भाई, अब वो बड़े परेशान हो जाते कि क्या कहूँ मैं इनको, कैसे इनको सांत्वना दूँ। बहुत सोचा, बहुत सोचा, क्या सोचा, ये रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? कृष्ण के लिए, अगर कृष्ण के लिए कोई रोए वो क्या है, बड़ा ऊंचा सत्य। अगर हम कहते तो कृष्ण के लिए मत यार रोना नहीं चाहिए, तो हम उसकी भक्ति क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। उसको कहे कि तू रो मत तो उसकी भक्ति काम कर रहे हैं, और उसको कहे तू और रो तो विचार तो बना नहीं, उनको समझ नहीं आ रही वो कहें क्या। तो बहुत सोचा, बहुत सोचा, बृहस्पति के शिष्य ने बहुत सोचा कि क्या बोलो मैं ताकि ये मामला जम जाए। बोलते नंद बाबा जी आप बड़े धन्यवान और भाग्यवान हैं, अरे जो इस सृष्टि का रचयिता परम ब्रह्म है वो आपका पुत्र बन के बना हुआ है। बोलते उधर नंद बाबा मैं तेरे बड़े सम्मान करता हूँ, तुम बृहस्पति का पुत्र हो, शिष्य है, बहुत समझदार है, तेरी समझदारी की चर्चे सारे सारे द्वारका में, सारे मथा में, अभी द्वारका नहीं बनेगी, मथा क्या है, सारी मथा में है, मैं जब भी जाता हूँ सब लोग तेरी तारीफ करते हैं, और कृष्ण का तू सखा है, कृष्ण ने तो ले जाएंगे, लेकिन मैं नहीं समझता तो तू ऐसी मूर्ख है। मैंने क्या मूर्ख क्या कर दी, देख एक बार बता, सच्ची सच्ची बता, एक आदमी को किसी ने एक बड़ा चमचमाता हुआ टुकड़ा दिया, वो था बड़ा अनमोल हीरा, सही मालूम, उसने सोचा कांच का टुकड़ा है उठा के उसने मलेरी भी रख दिया, कांच के टुकड़े को क्या करेगा, मलेरी भी रख दिया किसी के लगना जाए। एक दिन के बाद वो आया, अरे भाई मैंने तुझे एक चमचमाता टुकड़ा दिया था, वो कहाँ है? तो मैंने फेंक दिया, बाहर फेंक दिया, कुछ दे गया, हाँ वो तो हीरा था। अब आज जिसने उसको कांच के टुकड़े को बनेरी पे रख दिया और बनेरी से कोई ले गया, उसको जब पता चलेगा कि वो क्या था, हीरा था, तो उसको क्या लगेगा, खुशी हुई, कृष्ण हमारा लाल था, हमारा बेटा था, ये तो हमें मालूम है, लेकिन हमारे हाथ से वो टूट गया, और जब आज आके हमें कह रहा है कि वो भगवान था, तो हम तो और ज्यादा दुखी हो गए, तो हमारा दुख बढ़ाने आया है या घटाने आया है। सोच नहीं मारा, समझ नहीं मारा मैं क्या करूँ। जब वो गोपियों के पास आए तो गोपियों ने तो ऐसी इच्छुक उतारी, ऐसी इच्छुक उतारी उसकी गुजरी तो थी ज्ञान की टूट गई। और वो कहते हैं भागे भागे छह महीने वहां रहे, अपने कपड़ों को संभाल के कि यहाँ मैं अगर अटक गया तो यहीं का रह जाऊंगा। किसी के पास जाके कहते हैं प्रभु आपकी गोपियों का तो कोई पारोवार नहीं है, मैं अगर आपके ब्रज में ऐसी घास बन जाऊं जिससे ये चल जाए, या कोई ऐसी मैं लता बन जाऊं जिससे इनके चरण में से धूल इनकी उड़े और मेरे पे पड़ जाए तो मैं धन्य हो जाऊं, मैं इनके पांव पास कूदूं। तो वही उद्धव आज उद्धव पुर में घास और क्रीपर बन के बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं कि गोपियों की धूल बन के वो प्योर हो जाए। और अभी तक वो तपस्या चल रही है पर उनका काम हुआ नहीं। अब हम यहाँ से चलते हैं तो राधा कुंड में प्रवेश करते हैं। राधा कुंड में प्रवेश करने से थोड़ा सा चल ले लो। छोटी मोटी जगह छूटती है वो मैं छोड़ रहा हूँ तेजी से जाते हैं। हम भी सोचते हैं कार में हमें प्रकट में कार में इतने नहीं होगा थी जितनी मैं आपको राधा कुंड के राधा कुंड शहर में भी शहर में सबसे पहले हमें राधा गोरिया मठ है वो अन्य वैष्णव लोग चला रहे हैं। उस मठ की स्थापना हमारे ओम विश्वभा परमानंद प्रेम जी का चाहे अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमारे गुरु जी यानी पूज्यपाद नारायण महाराज जी के गुरु जी यानी श्री भक्ति प्रज्ञान केसरी महाराज के गुरु जी थे। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको प्रभुपाद जी भी कहते हैं। एक तो कौन वाले अपने गुरु को प्रभुपाद जी कहते हैं वो भी इनके शिष्य थे। ठीक है, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी थे, उन्होंने एक गौड़ी मठ स्थापित किया था। वहां पे राधा कुंड में चैतन्य महाप्रभु की प्रणाली से एक अप संप्रदाय है जो संप्रदाय सही भक्ति मार्ग में नहीं है लेकिन अपने को कहता है हम चैतन्य महाप्रभु से आ रहे हैं, वो बाबा जी संप्रदाय कहलाता है। सहजीय लोग उनको कहते हैं सहजीय बाबा जी संप्रदाय। उन लोगों ने राधा कुंड में पूरा जैसे एक अपना एक छत्र राज्य स्थापित कर रखा है। और वो लोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के जो दृढ़ विचार है सिद्धांत है उसका वो खंडन करते हैं। तो थोड़ा सा क्योंकि अब संप्रदाय होने के कारण हमारे प्रभुपाद जी ने उनका जबरदस्त खंडन किया। राधा कुंड में जाके जहाँ पे उनका अधिकार है वहां जाके उन्होंने अपने सिद्धांतों से उनके गलत विचारों का क्या किया, खंडन किया। तो उस गोरिया मठ में महाराज जी जब भी जाते हैं और बाबा जी के जो गलत सिद्धांत है उसकी वहां पे छजियां उड़ाते हैं। वो मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ क्योंकि क्या सिद्धांतों की लड़ाई झगड़ा है आप लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, जब आगे बढ़ते हैं तो ये बड़ी इत्यादि यहाँ पे प्राण निर्धारण करती है। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी जी जो श्री गोस्वामी थे यहीं पे उनकी समाधि यहाँ पे हरिनाम संकीर्तन एक अखंड हरिनाम संकीर्तन चलता आ रहा है, पता नहीं कितने सालों से चलता आ रहा है। और वहाँ पे समाधि में हम प्रणाम करेंगे, प्रणाम करके उनकी परिक्रमा लगाएंगे, रघुनाथ दास गोस्वामी जी से प्रार्थना करेंगे शुद्ध ब्रज की भक्ति राधा जी की चरण किंचरी बनाने के लिए। हे रघुनाथ दास गोस्वामी जी आप हमें अपनी कृपा प्रदान करें। माना जी चार बार उनकी समाधि की परिक्रमा करते हैं, वहां से परिक्रमा करने के बाद एक गली छोटी सी गली से प्रवेश करते हुए वो एक जगह घूमते हैं, वहां पे कृष्णदास कविराज जी ने बैठ के चेतन चरितामृत लिखी। कृष्णदास कविराज जी हमारे करीब 92 साल की उम्र में चैतन्य महाप्रभु के सारे सिद्धांतों को बंगला प्रयागों में उन्होंने लिखा है। उस पुस्तक का नाम है चैतन्य चरितामृत। ये चैतन्य चरितामृत बड़ी मशहूर पुस्तक है और सारे हमारे गौड़िया सिद्धांत और विश्व के जितने भी वैष्णव भक्ति के शुद्ध सर्वोपरि और चूड़ांत सिद्धांत है, टॉप मोस्ट सिद्धांत है जिससे ऊपर और कुछ नहीं है। सिर के ऊपर मुकुट और मुकुट के ऊपर हीरा, हीरा जो है वो ये सिद्धांतों का उन्होंने वर्णन किया है चैतन्य चरितामृत में। वहीं पे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी उनके यहाँ वर्णन करते थे, पढ़ते थे तो रो रो के सारी किताबों पे उनकी आंसू गिरते थे, लेकिन आंसू होते या बारिश हो जाती थी या किसी से किताब नहीं खराब होती, कागज जो थे वो गलते नहीं थे, जो लिखा जाता था वो मिटता नहीं था। वहां से हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद वहीं पे रघुनाथ दास गोस्वामी जी की भजन कुटीर, जहाँ उन्होंने क्या किया, भजन किया। इस भजन कुटीर से हम आगे बढ़ते हैं तो
Boy.